आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पार्ट 15, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। स्टूडेंट्स, हमने ये आधा निबंध पढ़ लिया था जिसमें कि द्विवेदी जी कई लोगों की दलीलों को खारिज करते हैं। वे लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, जो महिलाओं को, स्त्रियों को पढ़ाना गलत समझते हैं या जिनको लगता है कि स्त्रियों को पढ़ाना सही नहीं होता, इससे समाज का पतन होता है, उनके कुतर्कों का, उनकी दलीलों का द्विवेदी जी खंडन करते हैं। उनकी इतनी गलत दलीलों को वो खारिज कर देते हैं। जैसे हमने अभी तक पढ़ा था कि कुछ विद्वानों द्वारा ये दलीलें दी गई कि जो पुराने समय की स्त्रियां होती थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जो हमने संस्कृत के पुराने नाटक देखे हैं, जो काव्य रचनाएं देखी हैं, तो उसमें जो स्त्रियां होती थी उनके संवाद अनपढ़ों की भाषा में लिखे होते थे, है ना। उनकी जो बातें होती थी वो अनपढ़ों की भाषा में होती थी। इसीलिए तो इस बात पे द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि उनकी जो भाषा है वो अनपढ़ों की नहीं बल्कि प्राकृत भाषा थी, जो उस समय बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत कुछ ही लोग बोलते थे, इसीलिए काव्य नाटकों में सबको संस्कृत बोलते हुए नहीं दिखाया गया है। जैसे कि आज जो लोग हिंदी, बंगाली या मराठी बोलते हैं उनको हम अनपढ़ नहीं कह सकते, वैसे ही उस समय प्राकृत बोलने वालों को हम अनपढ़ नहीं कह सकते। दूसरी चीज वो कहते हैं कि पुराने जमाने में जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें कोई ऐसी प्रणाली नहीं मिलती जिसमें पता चले कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए द्विवेदी जी कहती हैं कि ऐसे तो हमने सुना है पौराणिक ग्रंथों में दिया है कि पहले विमान उड़ते थे, लेकिन विमानों की बनाने की भी तो कोई प्रणाली नहीं दी गई है, तो हम विमानों का अस्तित्व कैसे स्वीकार कर लेते हैं। और अगर उनका अस्तित्व हम स्वीकार कर लेते हैं तो स्त्रियों की शिक्षा को लेकर इतने सवाल क्यों। तीसरा जो कहते हैं वो कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, तो उन्होंने कुछ विदुषी स्त्रियों के, ज्ञानी स्त्रियों की बात कही, उनका नाम बताया, जैसे अत्री की पत्नी हो गई, गार्गी हो गई, मंडन मिश्र की पत्नी हो गई, है ना, शीला और विज्जा हो गई। इनको नाम देते हुए वो बताते हैं कि ये इतनी पढ़ी लिखी थी कि इन्होंने बहुत से पूजनीय पुरुषों का, बहुत से विद्वान पुरुषों का तर्क वितर्क में उन्हें परास्त कर दिया था, इसीलिए लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से पतन होता है। तो जब अगर पुरुषों को पढ़ाना, उनके लिए जो शिक्षा है वो अमृत का घूंट हो सकती है, तो स्त्रियों को पढ़ाना या स्त्रियों की शिक्षा जहर का घूंट क्यों है। ऐसी बेकार की दलीलें देकर जो लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं वो भारतवर्ष का गौरव कभी नहीं बढ़ा सकते, है ना, हमारे देश को आगे बढ़ता हुआ वो देख ही नहीं सकते। और वो बताते हैं कि हमारे पुराने कालों में जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें लगभग सारी कलाएं सीखने की आजादी थी, जैसे वो नृत्य सीख सकती थी, है ना, नाचना सीख सकती थी, गाना सीख सकती थी, बजाना सीख सकती थी, फूल चुनकर हार बनाना सीखती थी, चित्र बनाना सीखती थी। जब इतनी कलाएं सीखती थी तो क्या उन्हें पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं होगी? पढ़ना लिखना क्यों नहीं कोई सीखने देगा? ऐसी बात कोई मुंह से क्यों निकालेगा? और अगर ऐसी बात कोई कहता भी है तो उसकी बात को कोई नहीं मानेगा, ये बात बिल्कुल फिजूल की होगी। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। आप लोग अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 107 पे आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 107 पे लास्ट पैराग्राफ से हमें शुरू करना था। ठीक है, मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि शिक्षा, स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान ना देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में ना था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपड़ और अल्पज्ञ होने अथवा गवारपन का सूचक नहीं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं द्विवेदी जी कि चलिए एक बार को जो लोग ऐसी दलीलें देते हैं कि पुराने समय में स्त्रियां अनपढ़ होती थी, उन्हें कभी पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, इस बात को भी हम मान लेते हैं। ठीक है कि पुराने समय में भारत की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, चलो नहीं हमने मान लिया, लेकिन हो सकता है उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी जाती हो। लेकिन अब तो ये जरूरत है ना, हमें हर समय ये आवश्यकता महसूस होती है कि महिलाएं भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो जब अब ऐसी जरूरत है तो अब हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। हमने हजारों कईयों नियमों को, बहुत से आदेशों को, प्रणालियों को, यानी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हें हमने तोड़ दिया है कि नहीं, है ना। हम परंपराओं को अपने सामर्थ्य अनुसार या फिर अपनी जरूरत के अनुसार हम बदल देते हैं। जहां हमें लगता है कि इसकी जरूरत अब नहीं है, उस परंपरा को हम छोड़ देते हैं, या इस परंपरा में कोई बदलाव की आवश्यकता है तो उस बदलाव को भी हम लाते हैं। तो जहां हम परंपराओं को ऐसे बदलते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, तो क्यों ना इस परंपरा को भी तोड़ देते हैं, है ना। ये जो पुरानी चाल चली आ रही है, वो कह रहे हैं पुरानी चाल यानी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि स्त्रियों को अनपढ़ रखना है, इसको भी तोड़ देते हैं, बदल देते हैं, अब स्त्रियों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं हमारी प्रार्थना है ना, यानी हम निवेदन करते हैं कि जो लोग स्त्री शिक्षा के विपक्षी हैं, यानी जो स्त्री शिक्षा को सही नहीं मानते हैं, उनको अपने मन में ये ख्याल आने ही नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी उनके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे भारत की जो भी स्त्रियां थी वो अनपढ़ थी। ये ख्याल क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं इसके लिए भी एक उदाहरण देते हैं कि आपको ये ख्याल क्यों नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कोई ना कोई सबूत मांगते हैं, है ना, कि अगर यहाँ की स्त्रियां अनपढ़ नहीं थी तो इसका सबूत दीजिए। तो इसका सबूत भी जो द्विवेदी जी हैं वो देते हैं कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में सारी स्त्रियां अनपढ़ थी, तो ऐसा नहीं मानिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और सबूत चाहते हैं तो सबूत भी देता हूँ। श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद में उत्तरार्ध में आपको 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। जब रुक्मणी का विवाह किसी और से होने वाला था तो रुक्मणी जी ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा पत्र लिखा और किसी ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेज दिया था। अब वो जो पत्र का जिक्र वहां आया है, वो पत्र प्राकृत भाषा में नहीं है, अच्छी खासी संस्कृत में है, है ना। उसके प्राकृत न होने का उल्लेख भागवत में नहीं है कि उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा। तो उस पत्र में जो पांडित्य दिखाया है, है ना, रुक्मणी ने जो ज्ञान दिखाया है, जिस तरीके से लिखा है, जो उनकी भाषा है, वह पत्र पढ़ के हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ थी, अल्पज्ञ यानी कम ज्ञान था उनमें, या गवारपन का सूचक नहीं है ये, है ना। उन्हें हम अनपढ़ या गवार बिल्कुल नहीं कह सकते। वो उससे अपना पांडित्य दिखाती हैं, कितनी विदुषी थी, कितनी ज्ञानी थी, ये दिखाती हैं। तो हम कैसे मान लें कि सारी स्त्रियां अनपढ़ होती थी। अब तो आपको सबूत भी मिल गया, है ना। आगे देखिए, पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराण कार्य कवि की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, जो पुराने ढंग के सनातन धर्मावलंबी हैं, यानी जो पुराने विचारों के हैं, जो पुराने धर्मों को, पौराणिक ग्रंथों को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, है ना, पुरोहित हैं, पंडित हैं, ऐसे लोग जो हैं, उनकी नजर में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व अधिक होना चाहिए, है ना। वो भागवत को ज्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे। और जब भागवत में ही मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, तो नाटक की तो बात ही नहीं रही। और इसके बाद भी, है ना, ऐसी दशा में, यानी इस स्थिति में भी, इसके बाद भी कोई ये कहता है कि पुराने जमाने की जो स्त्रियां होती थी वो अनपढ़ होती थी या पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो आप ऐसे लोगों की बात पर विश्वास कतई नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कहने लगे, वैसे तो वो भागवत में बहुत विश्वास रखते हैं, है ना, बहुत उनकी श्रद्धा है, लेकिन फिर भी अगर वो यह कहने लगे कि भागवत की जो बात है वो किसी पुराणकार, है ना, यानी जिसने पुराण लिखा हो, या किसी कवि की कल्पना मात्र है है ना, अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना के लिख दी गई। अगर कोई व्यक्ति ये भी कहता है, इतनी नीची सोच भी रखता है कि पुराणों की बात सिर्फ एक कोरी कल्पना है, ठीक है चलिए एक सेकंड को उनकी बात भी मान लेते हैं कि पुराणों की बात एक कवि की कल्पना है, तो नाटकों की बात तो उससे भी गई गुजरी हुई है ना। तो आप नाटकों का हवाला कैसे दे सकते हैं कि स्त्रियों को अनपढ़ दिखाया गया है, यानी स्त्रियां अनपढ़ होती थी, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, ये तो और भी गलत बात हो गई। आगे देखिए, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझा जाना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब पढ़ने लिखने ही का तो परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए, परंतु विक्षिप्तों, बात व्यतीतों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग ये दलील देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ हो जाता है ना, यानी बुरा हो जाता है, तो उनको ये समझना चाहिए कि ऐसे में तो जो पुरुष हैं उनकी शिक्षा भी फिर अनर्थ ही करेगी ना। आप शिक्षा को दोष दे सकते हैं, महिलाओं की या पुरुषों की शिक्षा को नहीं। फिर तो जो भी बुरे काम होते हैं उन सबके लिए हम शिक्षा को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। जहां कोई लोग बम के गोले फेंकते हैं ना, बम फोड़ते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, घूस लेते हैं, यानी रिश्वत लेते हैं, जितने भी बुरे काम है उन सबके लिए फिर शिक्षा को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और अगर सबके लिए शिक्षा को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा तो फिर तो हमें स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, जो भी ऐसी चीजें, उनको बंद कर देना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसे विचार विक्षिप्त, बात व्यतीत या गृहस्थ के अलावा कोई नहीं मान सकता। यानी कि विक्षिप्त यानी जो थोड़े से पागल लोग हों या कम दिमाग के लोग हों, बात व्यतीत यानी जो हर बात से दुखी रहते हों, निराश लोग हों, और गृहस्थ यानी पाप ग्रह से प्रभावित लोग, केवल ऐसे ही लोग ये बात कहेंगे और कोई ऐसी बात नहीं कहेगा। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्य पुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं कि वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। वाचस्वतया मदाचनात् स राजा वहो विशुद्धात्मती यत्संशक्रम माम लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तंत्वतम सदृशम कुलस्य। ठीक है, यानी लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आंख में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा से अनर्थ होते हैं, है ना, वो मर्यादा को भूल जाती हैं, कुछ भी कहने लगती हैं, तो उसका उदाहरण वो देते हैं शकुंतला और सीता जी द्वारा। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा था कि शकुंतला जो है उसने दुष्यंत को बहुत ही कटु वाक्य कहे, है ना, यानी कड़वे शब्द कहे, बहुत बुरे शब्द कहे, जो कि उसकी शिक्षा का परिणाम है। वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी फिर भी उसने इतनी बड़ी उद्दंडता की। तो अब द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि दुष्यंत जो थे उन्होंने गांधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह किया शकुंतला के साथ, और फिर वो मुकर गए, मना कर दिया उन्होंने कि मैं इसे नहीं जानता। तो इस पर क्या शकुंतला को क्रोधित नहीं होना चाहिए था, है ना, या फिर कटु वाक्य नहीं कहने चाहिए थे? इसमें कौन सी अस्वाभाविकता दिखा दी है? तो मनुष्य का स्वभाव है, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, या अन्याय होता है, तो आपको क्रोध आता है और आना भी चाहिए, आपको वो चीजें सहन नहीं करनी चाहिए। इसमें व्यंग करते हुए द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगर उनके साथ बुरी चीज हुई तो उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था, क्या खुश होकर उन्हें ये कहना चाहिए था कि आर्य पुत्र शाबाश, आपने तो बहुत अच्छा काम किया जो आपने मेरे साथ गांधर्व विवाह किया और फिर मुकर गए। आप नीति, न्याय, सदाचार, धर्म सबकी प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, है ना, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, न्याय किया है, अच्छा आचरण किया है, धर्म की रक्षा की है। और जो लोग पत्नी पे अत्याचार करके, उसके साथ अन्याय करके, फिर उससे ऐसी आशा रखते हैं कि वो सब कुछ सहे, कोई भी कटु वाक्य ना कहे, तो ऐसे लोगों को मनुष्य स्वभाव का ज्ञान ही नहीं है, है ना। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या होता है कि जब भी आपके साथ अत्याचार हो, अन्याय हो या कुछ बुरा हो रहा हो, तो आप उसका जवाब देंगे, है ना, आपको बदले में क्रोध आएगा। ऐसे में इन्होंने कोई भी गलती नहीं की और ना ही इसमें शिक्षा का दोष है, बल्कि ये मनुष्य का स्वभाव होता है। ऐसे ही वो बताते हैं कि जिस कवि ने शकुंतला नाटक में शकुंतला को अपमानित होने के बाद जो वाक्य दिखाए हैं उसके, कि उन्होंने दुष्यंत से क्या क्या दुर्वाक्य कहे, यानी बुरे वाक्य कहे, उन्होंने ही परित्यक्त होने पे यानी त्याग दिए जाने पे सीता जी से भी क्या कहलवाया है रामचंद्र जी को, वो सुनिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये श्लोक दिया और इसका मतलब है कि सीता जी लक्ष्मण जी से क्या कहती हैं कि जरा उस राजा से कह देना, अपने राजा से कह देना, यानी श्री रामचंद्र जी से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने आग में कूद कर विशुद्धता साबित कर दी थी, है ना, यानी तुमने तो अपनी आंखों के सामने ही मेरी अग्नि परीक्षा ले ली थी और उसके बाद भी तुमने लोगों के मुंह से मिथ्या बात सुना, झूठी बातें सुनी और तुमने मुझे छोड़ दिया। तो क्या ये तुमने सही किया कि तुम्हारे कुल के, तुम्हारे परिवार के अनुरूप क्या सही चीज है? तुमने मर्यादा का पालन किया? ये तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देता है क्या? इससे तुम ज्ञानी साबित हो जाते हो क्या? आगे पढ़िए। सीता का यह संदोष कटु नहीं तो क्या मीठा है, राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मानवादी महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत सैव धर्मो मनुना प्रणीत। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं द्विवेदी जी कि सीता जी ने जो ये संदेश भिजवाया वो कटु नहीं है, वो क्या मीठा है क्या? वो भी तो कड़वा है। और ये कड़वे शब्द क्यों कहे? क्योंकि अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए सीता जी क्रोधित थी और उन्होंने उन्हें केवल राजा कहकर ही संबोधित किया है और तभी उनका संदेश भेजा है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वो कहते हैं ऐसी उक्ति कोई गवार स्त्री तो नहीं लिख सकती। ये स्त्री किस, ये किसकी उक्ति है? महाब्रह्मज्ञानी, जिसको बहुत ज्ञान हो, राजा जनक की लड़की और मानवादी महर्षियों से उन्होंने धर्मशास्त्र का ज्ञान सीखा, उस रानी की। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अतैव मन्युर्ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो मनुष्य का स्वभाव है, जाहिर सी बात है, देखिए जब खुद उनके साथ हुआ तो उन्हें गुस्सा आई, जबकि ये बाकी जिन लोगों ने देखा उनको भी गुस्सा आया, है ना। जैसे वाल्मीकि जी जो इतने शांत, नीतिज्ञ, क्षमाशील, तपस्वी थे, उन्होंने भी अस्तयेव मन्युर्भृतार्गजे में कहकर रामचंद्र जी पर क्रोध प्रकट किया था। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटुवाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गवारपन का, न अकुलीनता का। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे शकुंतला और सीता माता ने अपने त्याग करने पे, अपने साथ अन्याय करने पे जो भी कटुवाक्य कहे दुष्यंत और रामचंद्र जी से, वो स्वाभाविक थे, है ना, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार थे। इसमें हम पढ़ने लिखने का दोष नहीं निकाल सकते और ना ही ये कह सकते हैं कि वो गवार थी इसलिए ऐसा कह दिया, और ना ही ये कह सकते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी थी इसीलिए ऐसा कहा। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, चाहे व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा, अगर उसके साथ अन्याय किया जाएगा तो उसको तो क्रोध आना लाजमी है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं कि जिससे अनर्थ हो सके, अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं, अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से, अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं, अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। अब वो अपनी बात कैसे रखते हैं कि पढ़ने लिखने में ऐसी बात नहीं होती कि पढ़ने लिखने से अनर्थ होने लगे या पढ़ने लिखने से कुछ बुरा होने लगे। अनर्थ का जो बीज होता है वो पढ़ने लिखने में नहीं होता, यानी पढ़ने लिखने वाले लोग अनर्थ करेंगे, बुरा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अनर्थ तो कोई भी कर सकता है, यानी बुरा काम तो कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, दोनों ही कर सकते हैं, है ना। ये जो अनर्थ है, बुरे काम है, दुराचार यानी बुरा आचरण है, पाप कर्म है, ये कोई व्यक्ति विशेष होता है वो ही करता है और ये उसके चाल चलन, उसके कर्मों को देख के हम बता सकते हैं। इसमें शिक्षा का दोष नहीं निकालना चाहिए, इसीलिए स्त्रियों को, महिलाओं को हमें जरूर पढ़ाना चाहिए। यहाँ अपनी बात को वो कहने के लिए अपना तर्क रखते हैं कि पढ़ाई लिखाई में कोई बुरी बात नहीं होती, इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, शिक्षा सबके लिए समान रूप से आवश्यक है। ठीक है, जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग ऐसी बातें कहते हैं कि हाँ स्त्रियां नहीं पढ़ती थी पुराने जमाने में या उनको पढ़ना लिखना मना था, ऐसे लोगों को या तो इतिहास की जानकारी नहीं है और या फिर वो जानबूझ के ऐसी बातें कहते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। और अगर वो जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए ना, समाज की ओर से ये लोग अपराधी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज का अपकार कर रहे हैं, है ना, उसकी उन्नति में, उसकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समाज की उन्नति, समाज की प्रगति तभी संभव है जब यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से आगे बढ़ रहे हों। समाज को एक गाड़ी के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसके दो पहिए कौन से हो जाएंगे, एक स्त्री और एक पुरुष। तो अगर एक भी पहिया कमजोर हुआ तो ये गाड़ी जो है वो नहीं चल पाएगी, है ना, वो टूट जाएगी। इसीलिए दोनों को ही बराबर अधिकार मिलने चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बराबर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, बराबर अवसर मिलने चाहिए, ताकि दोनों ही अपनी योग्यता को सिद्ध कर सके। और जब दोनों ही लोग पढ़े लिखे होंगे, समाज को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, तो समाज की जो उन्नति है, समाज की प्रगति है, वो संभव है। लेकिन वही जो लोग स्त्रियों के पढ़ाने के पक्ष में नहीं है, है ना, वो महिलाओं को पढ़ाना गलत समझते हैं या उसके विपक्ष में है, तो ऐसे लोग समाज की उन्नति में बाधा डालते हैं, यानी रुकावट पैदा करते हैं, वो समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं, यानी समाज को विघटित कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को समाज की ओर से दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं, है ना। आगे देखिए अंतिम पैराग्राफ। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है, पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए, खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, शिक्षा जो है बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, इसके अंदर बहुत से शब्दों का समावेश होता है, यानी इसके अंदर बहुत से शब्द समाये हुए होते हैं, है ना। पढ़ना लिखना तो इसका एक अंग है, शिक्षा तो किसी भी चीज का ज्ञान हो सकता है ना, हम कोई भी चीज सीख रहे हैं वो शिक्षा है, अब पढ़ना लिखना उसका एक हिस्सा है। चलो मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी नहीं समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों को पढ़ाना बुरा है, बल्कि अगर प्रणाली में उन्हें कोई कमी लगती है तो प्रणाली में संशोधन कीजिए, है ना, यानी इस प्रणाली में बदलाव करिए, बदलाव करवाने के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन पढ़ने लिखने को दोष देना गलत होगा। ऐसे तो अगर हम प्रणाली को दोष देंगे तो लड़कों की प्रणाली भी अच्छी नहीं है। ऐसे में किसी ने कहा है क्या कि हमें लड़कों की शिक्षा भी बंद कर देनी चाहिए, है ना, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको बंद कर देना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि हम शिक्षा के महत्व को समझते हैं। इसीलिए खुशी खुशी जिन्हें प्रणाली में गड़बड़ लगती हो वो लड़कियों की या स्त्री की शिक्षा की प्रणाली में संशोधन कर सकते हैं, है ना, अपने विचार रख सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप इस बारे में विचार कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं कि स्त्रियों को महिलाओं को हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरह की शिक्षा देनी है, कहाँ पर देनी है, घर में पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है ना, कैसे पढ़ाना, ये सारी बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए या चर्चा कीजिए। आपके जो जी में आता है यानी जो मन करता है वो कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए यानी भगवान के लिए ये मत कहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है, यानी पढ़ना लिखना बुरा है, क्या उससे अभिमान पैदा होता है, घमंड पैदा होता है, या वो गृह सुख का नाश करता है यानी घर की सुख शांति को नाश करने वाला होता है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ। यानी अगर कोई कहता है कि पढ़ना लिखना बुरा है, इससे व्यक्ति अनर्थ करने लगता है, बुरे काम करने लगता है ना, अभिमान आ जाता है उसमें, घमंड आ जाता है, और इससे घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है, तो ये सारी बातें बिल्कुल गलत साबित होंगी। ऐसा कहना तो झूठ होगा। आप शिक्षा प्रणाली को दोष दे सकते हैं, उसमें सुधार की उम्मीद कर सकते हैं या अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा को गलत नहीं बता सकते। शिक्षा तो आवश्यक चीज है, हर किसी का इस पे हक है, इस पे अधिकार है, उसे अवसर मिलने चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं आप स्त्रियों को कैसे और क्या पढ़ाना है, इन सब बारे में अगर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सब अपने अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन ये विचार बिल्कुल गलत हैं अगर आप कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना लिखाना चाहिए? हमारा समाज स्त्री और पुरुष से मिलकर ही तो बना है। अगर पुरुष पढ़ गए और स्त्रियां नहीं पढ़ी, यानी कि आधा समाज अनपढ़ रह गया। और क्या आधा समाज अकेला आगे बढ़ सकता है, अकेले कोई भी उन्नति कर सकता है? आप स्वयं सोचिए, अपने विचार से अपना दिमाग लगाकर सोचिए कि अगर आधे लोगों को पढ़ा दिया जाए और आधे लोगों को अनपढ़ रखा जाए, तो ऐसे समाज से हम विकास या उन्नति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, है ना? ऐसे समाज का तो विकास होगा ही नहीं, ये समाज का पतन होगा, यानी समाज पीछे की ओर जाएगा। इसीलिए महिलाओं को भी हमें शिक्षा का अवसर देना चाहिए। और देखिए, जैसे कि ये उन्होंने काफी पहले लिखा था, ये निबंध द्विवेदी जी ने काफी पहले लिखा था। अगर हम आज इसकी प्रासंगिकता देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्थितियों में कुछ तो बदलाव आया है ना। आज लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, आपकी कक्षा में भी लड़के और लड़कियां दोनों होंगी। तो जब लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, तो वो अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। आज किस क्षेत्र में लड़कियां नहीं है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, और फैशन के क्षेत्र में है, अभिनय के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो लड़कियों से अछूता रह गया है? हर जगह लड़कियां अपने आप को सिद्ध करते हुए लड़कों से, पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें समझ में आ रहा है कि जब दोनों ही लोग, स्त्री और पुरुष, मिलके आगे बढ़ रहे हैं, तो समाज में कितना सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। वहीं अगर हम जितनी लड़कियां हैं जो अभी कई जगह काम कर रही हैं, उन्हें नौकरी उनकी बंद कर दी जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाए, तो क्या इतनी अच्छे से जो अभी काम हो रही सब हो पाएगा? नहीं, सारी जिम्मेदारी समाज के सिर्फ एक हिस्से पे यानी पुरुष वर्ग पे आ जाएगी, जो कि गलत होगा। हालांकि अभी स्थितियां बदली हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह पे ये स्थिति है कि लड़कियों को पढ़ाना सही नहीं समझा जाता है। तो ऐसे लोगों को द्विवेदी जी के ये विचार जरूर सुनने और समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए, जिन्हें पता चले कि लड़कियों को पढ़ाना कितना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। और क्योंकि आप अब इस उम्र पे आ चुके हैं कि आपको देश में जागरूकता फैलानी चाहिए, तो आपको भी अपने आसपास अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में आपको जागरूकता पैदा करनी चाहिए, है ना। उनको प्रोत्साहित करनी चाहिए कि लड़कियों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है। ये आपकी पुस्तक में निबंध इसी विचार से दिया गया है, ताकि एक तो आपको स्त्री शिक्षा का महत्व समझ में आ जाए, है ना, महिलाओं को पढ़ाना कितना जरूरी है ये आपको समझ में आ जाए। दूसरा, अगर आप समाज में या अपने आसपास कहीं कुछ गलत होता हुआ देखते हैं कि वहां स्त्रियों को शिक्षा के अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप उन्हें समझाएं, लोगों में जागरूकता पैदा करें कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसी जितने आसानी से, जितनी सहजता से द्विवेदी जी ने अपनी बात रख दी, उतनी ही सहजता से आपको भी अपनी बात रखनी होगी और ये दलीलें आपको पेश करनी होगी। ठीक है, जो लोग तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं, बेमतलब की दलीलें देते हैं कि क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, उनकी दलीलों को कैसे खारिज करना है, कैसे उनका खंडन करना है, ये आप द्विवेदी जी से सीख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा निबंध है, बहुत ही प्रेरणादायक निबंध है, इसे घर में जाके एक बार और पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, अब बचते हैं प्रश्न अभ्यास, जो कि हम अगले ऑडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।